आज है 14 सितंबर दिन शुक्रवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है समुद्री तूफान फ्लोरेंस, मचा सकता है भारी तबाही।
Your time is running out. The ocean is going to start rising. This is a very dangerous storm.
जस्टिस रंजन गोगोई होंगे भारत के अगले चीफ जस्टिस।
बहुत लोगों को लगता था कि चीफ जस्टिस कभी नहीं बनेंगे और अपना करियर को रिस्क लेके उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
हिमाचल प्रदेश में बंदर कर रहे हैं फसलों की बर्बादी।
कोई बंदर को मारेगा तो 500 रुपए को मिलेंगे, तो भी लोगों ने एक भी बंदर को नहीं मारा, तो लोग भी बहुत ये कहें हम धार्मिक हैं।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के पूर्वी तट के नज़दीक आ रहे समुद्री तूफान फ्लोरेंस की वजह से लोगों की जान को खतरा है। फेमा यानी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस समुद्री तूफान की वजह से तटीय इलाकों के आसपास बाढ़ आ सकती है। उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और वर्जीनिया के तटीय इलाकों से करीब 17 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का आदेश दिया गया है। उत्तरी कैरोलिना के तटीय क्षेत्र में तो अभी से तेज हवाओं और बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि फ्लोरेंस का असली असर शुक्रवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे के करीब पता चलेगा। मैसाचुसेट्स के शहर बोस्टन के बाहरी इलाके में कम से कम 39 घरों और इमारतों में एक के बाद एक संदिग्ध गैस विस्फोट हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि लॉरेंस, एंडोवर और उत्तरी एंडोवर में दर्जनों तेज धमाके हुए हैं। उनका कहना है कि धमाकों की संख्या बढ़ भी सकती है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। गैस और बिजली की लाइनों को काटा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ये धमाके कोलंबिया गैस लाइन्स में दबाव की वजह से हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। संघीय जांच एजेंसी भी इसकी पड़ताल कर रही है। इसी साल 4 मार्च को दक्षिणी ब्रिटेन के सेल्सीबरी सिटी सेंटर में पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल को जहरीला नॉर्वेजन देने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। ब्रिटेन की सरकार ने इस मामले में जिन दो लोगों को संदिग्ध बताया था, उन दोनों व्यक्तियों ने कल रूस के एक चैनल पर इंटरव्यू दिया। अलेक्जेंडर पेट्रोव और रसलन बोशिरोव ने अपने साक्षात्कार में कहा कि उनका रूस की खुफिया एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे दोनों दो व्यापारी हैं। जब इंटरव्यू लेने वाली महिला ने उनसे सीसीटीवी का हवाला देते हुए पूछा कि क्या इन तस्वीरों में नजर आ रहे दोनों लोग वही हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये हम दोनों लोग ही हैं। हमारे दोस्तों ने हमें सलाह दी थी कि हमें वहाँ ज़रूर घूमने जाना चाहिए, इसलिए हम वहाँ थे। एक और जहाँ पेट्रोव और बोशिरोव इसे महज संयोग बता रहे हैं, वहीं ब्रिटिश सरकार ने इस इंटरव्यू को पूरी तरह झूठा बताया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार के सर्वोच्च नेता आंग सान सूची ने रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ सेना द्वारा किए गए अत्याचारों की पड़ताल कर रहे दो पत्रकारों को जेल भेजे जाने का समर्थन किया है। सूची ने अपने बयान में कहा कि दोनों पत्रकारों को इसलिए जेल नहीं भेजा गया कि वे पत्रकार हैं, बल्कि उन्हें देश के सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने की वजह से सज़ा सुनाई गई है। पिछले हफ्ते दोनों पत्रकारों को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले की निंदा हो रही है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी ने इस कदम को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। मोघेरिनी ने कहा म्यांमार के लोग इससे कहीं अधिक अच्छे माहौल के हकदार हैं। वे एक ऐसे देश के हकदार हैं जहां पत्रकार आज़ादी से अपना काम कर सकें और सरकार को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रखें। वे एक ऐसे देश के अधिकारी हैं जहां सभी लोग समान हों, सबके अधिकार एक समान हों, चाहे वो किसी भी धर्म और पृष्ठभूमि के ही क्यों ना हों। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। समुद्री तूफान फ्लोरेंस अमेरिका के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार लगभग 165 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। उपग्रह से मिल रही तस्वीरों के आधार पर मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि फ्लोरेंस तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है।
This is a very dangerous storm. Storm surge is why you have been placed under, many of you have been placed under evacuation.
ये तूफान बहुत खतरनाक है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वक्त बहुत कम बचा है, समंदर में उफान आ रहे हैं, तटीय इलाकों से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। ये थे फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फेमा के वरिष्ठ अधिकारी ब्रुक लॉन्ग के शब्द। आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी के पास, जो टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इरम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं, अमरीका के ईस्ट कोस्ट में, पूर्वी तट में, वो कौन से राज्य, कौन से शहर हैं जहां इस समय तूफान का खतरा मंडरा रहा है?
जी, जैसा कि ताज़ा अपडेट के मुताबिक गो के समंदरी तूफान का जो लेवल है, जो खतरे का लेवल है, वो अब दो नंबर टू बताया जा रहा है, कम कर दिया गया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि नॉर्थ कैरोलिना में इस वक्त जो है वो बारिशें चल रही हैं, तेज आंधी चल रही है। ये वो इलाका है जिसमें नॉर्थ कैरोलिना आता है, साउथ कैरोलिना आता है। साथ ही साथ वॉशिंगटन डीसी में भी कहा गया था कि इस तरह की वार्निंग दी गई थी, इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर की गई थी, लेकिन अब वहाँ यहाँ पर तूफान के आने का खतरा टल चुका है। साथ ही साथ मैरीलैंड, वर्जीनिया, ये वो इलाके हैं जिनमें खतरा कहा जा रहा है कि इनमें जो है तूफान आ सकता है, और बहुत सारे लोगों को स्पेशली नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना से कहा गया है कि वो अपने घर छोड़ दें ताकि वो महफूज जगहों पर पहुंच सके।
इरम, कुछ अंदाजा या आधिकारिक ऑफिशियल फिगर है आपके पास, कितने हजार या कितने लाख लोगों को महफूज जगहों पर भेजा गया है, घरों को खाली कराया गया है?
जी बिल्कुल, नॉर्थ कैरोलिना जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ पर लगभग 100 शेल्टर होम खोले गए हैं, जो कि डिफरेंट एनजीओज और हुकूमत मिलकर ये शेल्टर्स खोल रही है। बताया ये जा रहा है कि 90,000 के करीब जो है लोग, उनके पास पावर नहीं है, बिजली नहीं है, और इन 100 शेल्टर होम्स में लोगों को कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आज जल्द से जल्द पहुंचे। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 1.7 मिलियन लोग जो हैं वो नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में और वर्जीनिया में, वर्जीनिया स्टेट में, इससे असरअंदाज हो सकते हैं इस तूफान से, और इन लोगों को जो है अपने घर छोड़ने पड़ेंगे ताकि वो जानों का जया ना हो सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि 3 दहाइयों बाद इतना खतरनाक किस्म का तूफान जो है, समुद्री तूफान, इन इलाकों में आ रहा है।
इरम, ये कहा जाता है कि समुद्री तूफानों से तब ज्यादा नुकसान होता है जब वो समुद्र से धरती पर टकराते हैं, क्या फोरकास्ट, क्या पूर्वानुमान है, कब फ्लोरेंस तूफान लैंडफॉल करेगा?
जी, पहली प्रेडिक्शंस ये बताई जा रही थी कि जुमेरात तक जो है ये तूफान जो है ये पहुंच जाएगा उन इलाकों का जिनका तयन किया गया था, लेकिन हमने ये देखा कि बारिश जो है उसमें थोड़ी कमी आई है, आंधी में किसी हद तक कमी आई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जुमे की सुबह, जब अमरीका में जुमे की सुबह होगी, अभी इस वक्त यहाँ पर रात के 9 बज रहे, तो तब जो है ये तूफान हिट करेगा नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना में, उन इलाकों में जहाँ पर खतरा है कि ये डेंजरस जो है आंधी तूफान और ये समंदरी तूफान बढ़ रहा है।
इरम, चलते चलते ये बताएं कि बोस्टन में जिन घरों में धमाके की खबरें आ रही थी, गैस रिसाव लीक की खबर आ रही थी, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, पुलिस अहलकारों ने यही बताया कि 40 घर जो है वो अपेरेंटली, यही कहा जा रहा है कि जो गैस सर्विस थी उसमें खराबी की वजह से ये आग भड़की, जिसमें कम से कम 40 घर जो है उनको आग लगी, बिजनेस कुछ शॉप्स थे उनको भी आग लगी। 3 इलाके हैं जहां पर ये आग फैल गई। इस आग की वजह से 6 लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं, 2 जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिनमें फायर फाइटर जो आग बुझाने के लिए वहां गए थे वो भी शामिल है, और अभी कहा यह जा रहा है कि उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोगों को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी रेजिडेंट्स, वहाँ के जो रिहायशी हैं, उनको कहा गया है कि वो जो है वो इलाका छोड़ दें ताकि मजीद अगर कोई तबाही होती है तो जानों का जया ना हो सके।
वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दो दिन के दौरे पर रूस में हैं, जहां कल उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके बताया है कि 11 महीनों में भारतीय नेता की यह तीसरी रूस यात्रा है। बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मीता नारायण से पूछा कि भारत रूस संबंध आज की तारीख में कहाँ हैं, किस दिशा में जा रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि भारत और रूस के जो रिलेशंस हैं, इनको जैसे कहते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल रिलेशंस हैं और ये बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और आगे भी ये चलते जाएंगे। जो हमारे मेन पिलर्स हैं, जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी है, एक हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो एक कॉन्फिडेंस है, जिनको हम कहते हैं दे आर द मेजर पिलर्स ऑफ इंडो रशियन रिलेशंस, इसमें हमारा कोई बदलाव नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इन वर्षों में जितने भी हमारा बायलैटरल ट्रेड है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ये स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं, ये कुछ कुछ जिन मुद्दों पे खड़ी है, एक स्तर से आगे बढ़ी है। जो हमारे भारत और रूस के जिन असूलों पे वो खड़े हुए थे, फ्रेंडली और कोऑपरेशन रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, वो इस क्राइसिस के टाइम पे भी भारत ने वो मेंटेन किया और ये प्लेज किया कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड्स हैं हमारे, इसमें ये कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, रूस कहता है कि वो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई और जैसे स्पेयर पार्ट्स हैं, वो इंडियन डिफेंस को वो उसने कंटिन्यूड रखा। और रशिया यहाँ से जो इंपोर्ट करता है ये सारे जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर, उनकी भी कंटिन्यूटी बनी रही। तो इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये अभी एक ऐसे समय पे भी इन सबको रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल, जैसे कहते हैं रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल इंडो सोवियत फ्रेंडशिप है ये, इसीलिए इस समय जो सुषमा जी का जो विजिट है ये एक बहुत बड़ा मायना रखता है। क्योंकि ये विजिट से जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे हम टुगेदर स्टैंड करते हैं टू फाइट टेररिज्म, रिफॉर्म्स इन यूएन सिस्टम जो है, एलाइज जो ब्रिक्स सिस्टम में जो एलाइज इंडिया और रूस कर रहा है, ये सारा तो डिस्कशन में आएगा ही और इन्हीं के ऊपर भारत का एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनेगी। तो हम तो यही कह सकते हैं कि जो हमारी ये वार्मथ है इंडो रशियन रिलेशनशिप्स की, वो मेंटेन्ड है और वो सस्टेन्ड है।
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रूस के दौरे पर दोनों देशों के संबंधों पर रोशनी डाल रही थीं जेएनयू की प्रोफेसर मीता नारायण। श्रोताओं को याद होगा, इस साल जनवरी में भारत में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने संवाददाता सम्मेलन करके सुप्रीम कोर्ट में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्हीं 4 जजों में शामिल थे जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्हें अब भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वो 3 अक्टूबर को कामकाज संभाल लेंगे और मौजूदा चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की जगह लेंगे। सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की ये रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि नए चीफ जस्टिस के सामने क्या चुनौतियां होंगी।
ये बात पहले से ही पता थी कि इस साल अक्टूबर में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा रिटायर होने वाले हैं, लेकिन इस पर शक था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में जस्टिस गोगोई को सबसे मुखर जज माना जाता है और ऐसे में उनकी नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश मेनन कहते हैं,
अपॉइंटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब बहुत लोगों को लगता था कि शायद चीफ जस्टिस कभी नहीं बनेंगे और अपना करियर को रिस्क लेके उन्होंने वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरी बात यह है कि हाल ही में बहुत सारा लिंचिंग्स, कम्युनल वायलेंस, कास्ट वायलेंस, बहुत कुछ हुआ है। सबको लगता है कि चीफ जस्टिस जो है इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ का कोई होना चाहिए, और जस्टिस गोगोई तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और आउटस्पोकन है, इसलिए अच्छी बात है।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि आम तौर पर सर्वोच्च जज को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है।
लग रहा था कि ये सरकार शायद कोशिश करे सुपरसीड करने की, लेकिन ये नहीं किया, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि नहीं तो जुडिशरी को भी बहुत नुकसान होता और सरकार को भी बहुत नुकसान होता।
जस्टिस रंजन गोगोई को उनके एक बयान के लिए भी जाना जाता है, जो उन्होंने दिल्ली में आयोजित 3rd रामनाथ गोयंका का स्मृति व्याख्यान के दौरान दिया था। उन्होंने न्यायपालिका को उम्मीद का आखिरी गढ़ बताया और कहा था कि न्यायपालिका को पवित्र, स्वतंत्र और क्रांतिकारी होना चाहिए। ऐसे में उनसे उम्मीदें भी अनेक हैं और कहा जाए तो उनके सामने चुनौतियां भी कई हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं,
जिस तरह से एक ये फासीवादी हमला हो रहा है पूरे देश के मौलिक अधिकारों के ऊपर, अल्पसंख्यकों को लिंच किया जा रहा है पूरे देश में, मीडिया को अपने कब्जे में किया जा रहा है, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इस लोकतंत्र के लिए, जिसमें न्यायपालिका को बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ेगी।
वरिष्ठ पत्रकार रमेश मेनन कहते हैं कि जस्टिस गोगोई के सामने अब जो मामले आएंगे उनमें से बेहद अहम होगा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का मामला।
NRC का तो उनके सामने आएगा ही और आई थिंक ही विल डू अ गुड जॉब, और वो एक साल के अंदर निश्चित कोई न कोई जजमेंट आएगा उसके ऊपर। जब जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बनेंगे तो ही विल टेक स्टर्न एक्शन।
जस्टिस रंजन गोगोई पूर्वोत्तर राज्य से मुख्य न्यायाधीश बनने वाले देश के पहले व्यक्ति होंगे। उन्होंने साल 1978 में एक वकील के तौर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट में काम करना शुरू किया था। बाद में साल 2001 में वो हाईकोर्ट के जज बने। 2012 में वो सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किए गए थे। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर होने वाले हैं और उनका कार्यकाल 1 साल 44 दिनों का रहेगा।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को समय से पहले रिहा करने का निर्देश जारी किया है। चंद्रशेखर को बीते साल सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद गिरफ्तार करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद किया गया था। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक चंद्रशेखर की मां की याचिका पर गौर करते हुए सरकार ने उनकी समय पूर्व रिहाई करने का फैसला लिया है। सहारनपुर की चर्चित भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को 1 नवंबर 2018 तक जेल में गुजारना था। उन्हें पिछले साल मई में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा फैलाने के आरोप में हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर भीम आर्मी बनाकर सुर्खियों में आए थे। हालांकि इस मामले में उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी रिहाई के अगले ही दिन उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर फिर से जेल भेज दिया गया। सरकार के इस फैसले की उस समय काफी आलोचना भी हो रही थी और भीम आर्मी ने चंद्रशेखर की रिहाई के लिए आंदोलन भी किए थे और दिल्ली तक प्रदर्शन किया था। भीम आर्मी ने चंद्रशेखर को जेल के भीतर प्रताड़ित करने के भी सरकार पर आरोप लगाए थे और इस संबंध में उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर चंद्रशेखर के पक्ष में खड़े थे। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद चंद्रशेखर से मिलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो राज्य सरकार का ये फैसला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण और अन्य मुद्दों पर सरकार दलितों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती है। वहीं पिछले दिनों भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती की करीबी भी राजनीतिक चर्चा का विषय थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी का अच्छा खासा प्रभाव है और कैराना और नूरपुर के उपचुनाव में बीजेपी की पराजय का मुख्य कारण भीम आर्मी के दलित मुस्लिम गठजोड़ को भी माना जा रहा है।
ये थे समीर आत्मज मिश्र। और इस बीच भूमिका राय अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं। बताएं भूमिका, आज के अखबार क्या कह रहे हैं?
संदीप, आज जो डूसू के चुनाव हुए थे और उनका जो नतीजा आया है, लगभग सारे अखबारों ने उस खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। और इंडियन एक्सप्रेस ने इसी से जुड़ी एक बहुत रोचक तस्वीर छापी है, जिसमें ABVP की महामेधा नागर जो है वो दौड़ रही है और उनके पीछे एक महिला पुलिस दौड़ रही है। और आपको बता दें, जो परिणाम है वो जब सुबह कल जब काउंटिंग शुरू हुई तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसमें धांधली होने की बात कही, लेकिन देर रात जब नतीजे आए तो 3 जो पद हैं वो ABVP के हिस्से गए हैं और 1 पद जो सेक्रेटरी का पद है वो NSUI के हिस्से में गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव संपन्न हो गए
जी। और इसके अलावा संदीप, माल्या के दावे ने जो आग लगाई है,
विजय माल्या शराब कारोबारी
ने जो दावा करके आग लगाई वो फिलहाल बुझती हुई नजर नहीं आ रही। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं और राहुल गांधी ने जहां सरकार पर विजय माल्या के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है, वहीं जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कांग्रेस अपने किए को छिपाने के लिए ये सारे बयान दे रही है। तो फिलहाल ये मामला भी देखिए आगे कितने दिनों तक चलता है। और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने जस्टिस रंजन गोगोई भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे, इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। आपको याद होगा दिल्ली का बुरारी मामला, जिसमें एक ही घर के 11 लोग मृत पाए गए थे, उस मामले में एक नया डेवलपमेंट ये है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संदेह जताया है कि परिवार के सभी लोग जो थे, जितने 11 लोग जो मृत पाए गए, वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। और आज एक बड़ा फैसला आ सकता है, इस खबर को नवभारत टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। दहेज मामलों में गिरफ्तारी से छूट पर फैसला आज। केस दर्ज होने के बाद जो वर पक्ष है उससे गिरफ्तारी तुरंत होगी या पड़ताल के बाद होगी, आज इस मामले में फैसला आ सकता है। इसके अलावा एक बड़ी ही रोचक तस्वीर दैनिक भास्कर ने छापी है संदीप, जिसमें भारतीय क्रिकेटर जो हैं गौतम गंभीर, वो एक किन्नर कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां वो बिंदी लगा करके तैयार होकर के उन्होंने शिरकत की है वहां पे। तो ये तस्वीर काफी रोचक है।
काफी रोचक तस्वीर है, बहुत शुक्रिया भूमिका। एक महीने पहले भारी बारिश और बाढ़ की वजह से केरल और सीमावर्ती कर्नाटक राज्य में चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची और रबर की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं इमरान कुरैशी।
पिछले महीने की भयानक बारिश और जानलेवा बाढ़ के बाद केरला और पड़ोसी कर्नाटका में काफी कुछ बदल गया है। कुछ जगहों पर लोग ये भी कह रहे हैं कि बाढ़ की वजह से हमारी जमीन पड़ोसी के जमीन पर चली गई है। सुनने में यह बात अजीब सी लगती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि बाढ़ के पानी ने कई जगहों से मिट्टी को और पेड़ पौधों को पूरी तरह से बह दिया है। 53 साल के कर्नाटका के कोडगु में प्लांटेशन पर काम करने वाले प्लांटर बोस मंदाना ने बीबीसी को बताया।
So what happens is in the hills, more than 10 feet of topsoil has been washed off.
पहाड़ी इलाकों में 10 फीट तक की मिट्टी हमारे जमीन से पड़ोसी के जमीन पर बह गई है। बड़े बड़े पेड़ जो कॉफी के पौधों को छाया देते हैं, वो पानी में बह गए हैं या किसी दूसरे प्लांटर के जमीन पर पड़े हैं। जमीन को पहले की तरह तैयार करने में 8-10 साल लग जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगले 10 साल तक लगभग 3,000 हेक्टेयर जमीन पर कॉफी का उत्पादन नहीं हो पाएगा। ये थे बोस मंदाना के शब्द। कॉफी ही नहीं, केरला की इलायची और रबर की खेती भी बाढ़ में बुरी तरह तबाह हो चुकी है। एसोसिएशन ऑफ प्लांटर्स ऑफ केरला के सचिव अजीत बालाकृष्णन कहते हैं, भारी बारिश की वजह से रबर नहीं निकाला जा सका। उसके बाद रबर पेड़ के जड़ों में पानी भर गया था। रबर सितंबर से दिसंबर में निकाला जाता है। वही इलायची की 55% फसल बारिश की वजह से तबाह हो चुकी है। ये थे अजीत बालकृष्णन के शब्द। यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया यानी सारे दक्षिण भारत के प्लांटर संस्थाओं के अध्यक्ष टी जयरामन इस तबाही की दूसरी तस्वीर बताते हैं। उन्होंने कहा, हमारी संस्था और कॉफी बोर्ड ने जायजा लिया है कि करीब 85,000 टन कॉफी बर्बाद हो गई है। रबर की खेती को 25,000 टन का नुकसान हुआ है। लगभग 27,000 टन चाय के पौधे बर्बाद हो गई हैं और काली मिर्च को भी भारी नुकसान हो गया है। यह नुकसान 5,000 करोड़ रुपए बैठता है। बाकी नुकसान का हिसाब हम अभी नहीं लगा पाए हैं। ये थे टीजा रामन के शब्द। केरला और कर्नाटका में जो बड़े प्लांटेशन हैं, वहां कर्मचारियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन का वेतन दिया जाता है। लेकिन मौजूदा हाल ये है कि छोटे स्तर पर प्लांटेशन करने वाले अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस धंधे में लगे रहें या काम बदल दें। इमरान कुरैशी, बीबीसी, बेंगलुरु।
हिमाचल प्रदेश में किसान बंदरों से बहुत परेशान है। इतने परेशान कि खेती किसानी करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की वजह से किसान चाहकर भी बंदरों को मारना नहीं चाहते। शिमला से पंकज शर्मा की रिपोर्ट सुने।
खाते कम है, तोड़ ताड़ के ज्यादा करते हैं और लंगूर तो बहुत ज्यादा करते हैं। लंगूर एक दिन 40-50 आए, हमारे 3-4 आदमी गए, तो कवर नहीं कर सके। रात को वहीं रहे वो, फिर सुबह उठ करके गए हम, 3-4 टाके पटोके भी चलाए, बंदूक भी थी ले गए। नीचे जो हमारे जंगल एरिया का कुछ एरिया है उसको छोड़ दिया लोगों ने। फसल नहीं बीजते, चरी वगैरह बीज देते हैं घास के लिए।
ये है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बरोक गांव में रहने वाले किसान चेंगूराम ठाकुर। केवल चेंगूराम ही नहीं, हिमाचल के कई किसान इस समय बंदरों के कहर से जूझ रहे हैं। उनके लिए नौबत खेती छोड़कर आय के अलग रास्ते अपनाने की आ गई है। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तमर कहते हैं,
ये जंगलों से हट करके लोगों के खेतों में, घरों में और शहरों के अंदर पहुंच गए, तो इससे ये इतनी विकराल समस्या हुई।
डॉक्टर कुलदीप बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में करीब 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से करीब 75,000 हेक्टेयर जमीन बंदरों और जंगली जानवरों के कारण लोगों ने बंजर छोड़ दी है। लेकिन बंदरों की समस्या ने यहाँ विकराल रूप क्यों ले लिया है, इसके बारे में हिमाचल के प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉक्टर रमेश चंद कंग कहते हैं कि तेजी से हुए शहरीकरण का असर जंगलों पर भी पड़ा है। बंदर गांव में खेतों की तरफ आने लगे हैं और हजारों बंदर अब शहरों में भी बस गए हैं, जहां कूड़ेदान के आसपास इन्हें आसानी से खाना मिल जाता है।
वो जहाँ भी खाना फिर वो आ जाते हैं, वहाँ जैसे फसल पकेगी उस तरफ आना शुरू है। पूरे के ट्रुप में रहते हैं, इनका बेसिकली बिहेवियर ही ऐसा, ट्रुप में मूव करते हैं, 25 से 30 के 35 से ट्रुप में मूव करते हैं। वो पूरा वाले डस्टबिन खुले रहते हैं, तो वहाँ वो जाएंगे, कहाँ खाना उनको सब पता है।
शिमला शहर के अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल 75 तहसीलों और 34 सब तहसीलों में से 53 में बंदर को बर्मिन कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके तहत यहां बंदरों को मारने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी होती है। तत्कालीन वन मंत्री ठाकुर सिंह बरमोरी ने 2016 सितंबर में बंदरों को मारने पर 500 रुपए प्रति बंदर इनाम देने की घोषणा भी की, लेकिन इसका कोई खास परिणाम अभी तक नहीं दिखा। शिमला नगर निगम की मेयर कुसुम सदरेट कहती हैं,
हनुमान जी का रूप माना जाता है बंदर को, तो इसलिए पहले एक बार ऐसा भी चला था, गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान चला था कि कोई बंदर को मारेगा तो 500 रुपए को मिलेंगे, तो भी लोगों ने एक भी बंदर को नहीं मारा, तो लोग भी बहुत ये कहें हम धार्मिक हैं।
शिमला नगर निगम की मेयर की बातों से वाइल्ड लाइफ विभाग के डॉक्टर संजय रतन भी इत्तफाक रखते हैं। वह कहते हैं कि सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद अभी तक बंदरों को मारने के सिर्फ 5 ही मामले सामने आए हैं।
अगर हमने इसको मेथड को स्टरलाइजेशन के द्वारा यानी कि ऑपरेशन करने के द्वारा इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक बीड़ा नहीं उठाया होता, तो आज की डेट में ये पॉपुलेशन लगभग 6 से 7 लाख के आसपास होती, जिसको कि हमने अभी भी 2 लाख और 3 लाख के बीच में रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में बंदरों को लेकर हमेशा राजनीतिक दलों में भी खींचतान चलती रही है। चुनावों के वक्त हर पार्टी के घोषणा पत्र में बंदरों से मुक्ति के तरीके एक बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन कोई भी सरकार अब तक इस समस्या को पूरी तरह निपटाने में कामयाब नहीं हुई है। पंकज शर्मा, शिमला।
और अब एक नजर खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। शुरुआत करते हैं पोलैंड मुक्केबाजी टूर्नामेंट से, जहां पे भारत की एल सरिता देवी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और अंतिम चार में सीधे प्रवेश करने वाली अनुभवी मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने पोलैंड के गिलवाइस में चल रही महिलाओं की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय सिलेसियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक पक्के किए। मैरी कॉम ने फिटनेस मुद्दों के कारण हाल में सम्पन्न एशियन गेम्स से बाहर रहने के बाद दोबारा रिंग में वापसी की है और 52वें ISSF विश्व चैंपियनशिप में कल 25 मीटर मैंस जूनियर स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल हासिल हुए भारत को। भारत के लिए इस स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में 16 साल के निशानेबाज उदयवीर सिंह ने सोना जीता, तो वहीं टीम स्पर्धा में भारत को पहला स्थान हासिल हुआ। सीनियर स्पर्धा में शिराज शेख पुरुष स्कीट क्वालिफिकेशन के पहले दिन के बाद 39 अंक के साथ 8वें स्थान पर चल रहे हैं। भारतीय टीम 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 24 पदक जीतकर 4थे स्थान पर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 की इस पहली क्वालिफाइंग प्रतियोगिता से 2 कोटा स्थान हासिल करने में सफल रहा है। और क्रिकेट में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंत टेस्ट बल्लेबाजों की ICC रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में किया है। ICC टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारकर भी टीम इंडिया और विराट कोहली नंबर 1 पर कायम हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
BBC समाचार। जस्टिस रंजन गोगोई भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के पूर्वी तट के नज़दीक आ रहे समुद्री तूफान फ्लोरेंस की वजह से लोगों की जान को खतरा है। मैसाचुसेट्स के शहर बोस्टन के बाहरी इलाके में कम से कम 39 घरों और इमारतों में एक के बाद एक संदिग्ध विस्फोट हुए हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त से एक पुरस्कार वितरण समारोह में अजीबोगरीब हरकत करने के लिए जवाब मांगा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक प्रवक्ता से यौन उत्पीड़न के मामले में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। अगला प्रसारण सुनना न भूलें दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत।